अभिमान अभी तक निशा से नाराज था। हालांकि डिनर करते वक्त आशिका ने उसे यही समझाया था कि एक बार उसे निशा से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभिमान ने उसे इस बात के लिए साफ मना कर दिया था। अभिमान को डर था कि अगर निशा की गलतियों के बाद उसने निशा से बात की तो वो अपने गुस्से में उसके साथ बदतमीजी कर देगा, जो वो नहीं करना चाहता था। रात के लगभग 11 बजे के करीब अभिमान और आशिका बिस्तर पर लेटे हुए थे। कमरे की लाइट बंद थी क्योंकि अभिमान के कहने पर आशिका ने अपने लेंस निकाल दिए थे। एक छोटी सी डिम लाइट जल रही थी जिसमें उनके चेहरे तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। आशिका को नींद नहीं आ रही थी और उसे अचानक अभिमान की सिसकी सुनाई दी। आशिका ने गहरी सांस ली और अभिमान के हाथ को थाम लिया था। उन दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो बातें शेयर क्यों नहीं करते हो, आशिका ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। अभिमान ने एक नज़र आशिका की तरफ देखा जो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसने जवाब में कहा, हाँ बोल भी कौन रहा है जो मुझसे हर छोटी चीज़ छुपाता रहता है। तुम्हें उनसे बात करनी है ना, आशिका ने सीधे सीधे पूछा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो भी किया उस वजह से मैं बहुत हर्ट हूँ। ठीक है, उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना तो मत करें, लेकिन तुम्हें गलत क्यों समझती हैं? किसी ने उनसे नहीं कहा था कि वो ये सब रस्में करने का दिखावा करें। अभिमान गुस्से में फट पड़ा था, जैसे उसे अपनी भड़ास निकालने का मौका चाहिए था। वो पूरे दिन से इन सबको अपने दिल में दबा कर बैठा था। जब मुझे हर्ट नहीं हो रहा है तो तुम क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? उन्होंने जो भी किया वो मेरे साथ किया, मैंने इतना माइंड नहीं किया, आशिका ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता जिसे चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं हूँ और मुझे बुरा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, अभिमान ने दांत भींचते हुए कहा। उसने आशिका के हाथ से अपने हाथ को अलग करना चाहा, लेकिन आशिका ने उसे कसकर पकड़ लिया था। ऐश, मेरा हाथ छोड़ो, अभिमान ने सख्त आवाज़ में कहा। और अगर नहीं छोड़ा तो क्या करोगे, आशिका ने चैलेंजिंग वॉइस में जवाब दिया। अभिमान ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा जानबूझकर दूसरी तरफ करने लगा ताकि आशिका का हाथ खींचने लगे और वो खुद ही अभिमान का हाथ छोड़ दे। एक पल के लिए अभिमान भूल गया था कि आशिका बहुत ज़िद्दी है। अगर उसे अभिमान का हाथ पकड़कर उसे शांत करना था तो वो किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अभिमान के पलटने पर आशिका भी उसके साथ पलट गई थी और इस वक्त आशिका की आधी बॉडी अभिमान के ऊपर थी। उसने अपने पैरों से अभिमान के पैर को लॉक कर लिया था। उसकी इस हरकत पर अभिमान हड़बड़ा गया था। वो आशिका को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। अभिमान ने उसे समझाते हुए शांत लहजे में कहा, सी, तुम इस तरह मुझे परेशान नहीं कर सकती हो। अभी मेरे ऊपर से साइड हटो, वरना फिर कहोगी कि आज रात फिर से मैंने तुम्हें चैन से सोने नहीं दिया। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल इतना बुरा है क्या जो मेरे थोड़ा सा भी पास आने कर तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते हो, आशिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। हे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे जज कर रही हो। तुम्हारी पोजिशन देखो, तुम जानबूझकर मुझे सेड्यूस कर रही हो ना, अभिमान ने सक पकाकर जवाब दिया। अभिमान के कहने पर आशिका को एहसास हुआ कि सच में उसकी पोजीशन सही नहीं है। आशिका ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और खुद ब खुद अभिमान से दूर हो गई थी। अभिमान ने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, लेकिन पहली बार आशिका के गाल शर्म से लाल हो रहे थे और वो अभिमान की तरफ पीट करके सोई हुई थी। थैंक गॉड तुम मेरे ऊपर से हट गई, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें बोल रहती हैं मुझे यही लगा था कि तुम मुझे और परेशान करने वाली हो, अभिमान ने राहत की सांस लेकर कहा। आशिका ने काफी देर तक उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। अभिमान ने पलटकर आशिका की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध रखा था। सो गई क्या, अभिमान ने पूछा। आशिका ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान को यही लगा कि उसे नींद आ गई है। तुम जानती हो ना मैं परेशान हूँ, एक छोटा सा हक करके तो सो सकता हूँ ना, वैसे भी तुमने उस रात को कहा था कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम भी मुझे इमोशनली सपोर्ट करोगी, अभिमान हिचकिचाते हुए बोल रहा था। अभी भी उसे आशिका को खुद से हक करने में अजीब लग रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और इमोशनल शब्द तो भूल कर भी यूज़ नहीं किया था, झूठ मत बोलो, मुझमें इमोशंस नहीं है, अचानक आशिका ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जो भी हो बस एक हग ही तो मांग रहा हूँ, अभिमान बच्चों की तरह नखरे करते हुए बोला। उसे यही लग रहा था कि आशिका मना कर देगी, लेकिन तभी आशिका खिसक कर उसके पास आने लगी और अगले कुछ पलों में आशिका की पीठ अभिमान के सीने से लगी हुई थी। अभिमान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने आशिका के बाजू को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया था। आशिका की आंखें बंद थी लेकिन उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर ये मुझसे प्यार करता है तो फिर बताने से इतना डर क्यों रहा है? क्या ये नहीं जानता कि ये जिस तरह से मुझे देखता है और इसकी जो हरकतें होती हैं उससे कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि इसके दिल में क्या है? लेकिन नहीं, इसे मुझसे उम्मीद क्यों है? अगर ये इसी तरह मेरे भरोसे रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी अपने दिल की बात मुझे बता पाएगा। आशिका अच्छे से समझती थी कि अभिमान उससे प्यार करता है, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से, बस वो उसके पहल करने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों नींद के आगोश में थे। अगली सुबह संडे होने की वजह से ऑफिस बंद था, ऊपर से अभिमान अपना पूरा समय अभिमन्यु के ऑर्गेनाइज किए ब्लड डोनेशन कैंप को देना चाहता था। अभिमान जल्दी तैयार हो गया था और आशिका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। आशिका तैयार होकर बाहर आ चुकी थी और उसे राहत महसूस हो रही थी कि फाइनली अभिमान ने उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद दिए थे। आशिका ने ग्रे कलर की लूज पैंट्स के ऊपर ब्राउन लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़कर कैप लगा रखी थी और नीचे स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। वहीं अभिमान ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। अभिमान ने आशिका की तरफ देखा और सिर हिलाकर तंज भरे लहजे में कहा, बिल्कुल होमलेस लग रही हो। मेरा छोड़ो, तुम बिल्कुल किसी बिलियनियर की तरह लग रहे हो। तुम्हारे होते हुए मैं होमलेस कैसे हो सकती हूँ? आशिका ने हमेशा की तरह उसका मुंह बंद करवा दिया था। अभिमान ने आगे कुछ नहीं कहा और वो हल्का मुस्कुरा कर रह गया था। जब आशिका और अभिमान कमरे से बाहर निकले तो निशा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अब क्या अपनी मॉम का चेहरा भी नहीं देखना चाहते? तुम अच्छे से जानती हो मैं बात करना चाहती हूँ, फिर क्यों इग्नोर कर रहे हो? निशा ने गुस्से में कहा। आप जानती हैं कि मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मेरा मूड सही नहीं हो जाता। अभिमान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और अभी भी वो निशा के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। तुम बच्चे नहीं हो जो किसी से नाराज हो जाने के बाद उससे बात करना छोड़ दोगे और उसकी तरफ नहीं देखोगे। समय रहते गलतफहमियां दूर करना जरूरी होता है, निशा ने उसे समझाते हुए कहा। बच्चा नहीं हूँ, लेकिन यह आदत अभी भी वैसे ही है। रही बात गलतफहमियों की, तो गलतफहमी आपको हुई है और उम्मीद करता हूँ कि समय रहते दूर हो जाएगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही आपसे दूर ना हो जाऊँ। अभिमान ने सख्त करके जवाब दिया और आशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। आशिका ने पलटकर निशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर टीजिंग स्माइल थी जो निशा को सच में बहुत चिढ़ा रही थी। ये लड़की जरूर मेरे अभिमान को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, निशा ने पैर पटकते हुए कहा।
अभिमान ने आशिका की इस हरकत को नोटिस कर लिया था। उससे सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, उन्हें इस तरह चिढ़ाना जरूरी नहीं है, वो पहले से तुमसे नाराज हैं। हाँ तो रहने दो ना, मैंने कहा ना, आई डोंट केयर। वैसे तुम्हारी मॉम ने एक बात बिल्कुल सच कही, किसी से नाराज हो जाने के बाद तुम उससे बात करना छोड़ देते हो, जैसे तुमने मेरे साथ किया था जब मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई थी, अचानक आशिका बोली। जिस तरह से आशिका अभिमान की हर एक छोटी हरकत को गौर से नोटिस करती थी, उसी तरह अभिमान ने भी एक चीज नोटिस की थी कि आशिका को सब कुछ ऑब्जर्व करने की आदत थी, और वो भले ही कम बोलती हो लेकिन सामने वाले की आदतों को जल्द ही समझ जाया करती थी। आशिका ने नीचे आते हुए इधर उधर देखा। हालांकि काम करने वाले हाउस हेल्पर हमेशा की तरह अपने कामों में लगे हुए थे, घर के फैमिली मेम्बर्स भी ना के बराबर दिखाई दे रहे थे, और सबसे जरूरी चीज जो उसने ध्यान दी थी वो ये कि आकाश गायब था। आशिका ने अभिमान से कुछ नहीं कहा, पर इस तरह आकाश का गायब होना उसे कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा था, और आशिका कभी अपनी सिक्स सेंस के मामले में गलत नहीं होती थी।